पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 2 ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम शुद्धात्मने नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहूणं
पञ्चाध्यायावयवं मम कर्तृग्रन्थराजमात्मवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। यह ग्रंथ राशि पंचाध्यायी है, जिसके रचयिता कोई कहते अमृत चंद्राचार्य है, अन्य मत के अनुसार राजमल जी पांडे। कल से हमने इसको पढ़ना प्रारंभ किया था, 3 श्लोक पढ़े भी थे। तीसरे श्लोक का हम भावार्थ दोबारा देखते हैं। पहले श्लोक में तो महावीर भगवान को नमस्कार किया था, दूसरे में मंगलाचरण के रूप में शेष तीर्थंकरों को नमस्कार किया था, धर्माचार्य धर्माध्यापक और धर्म साधुओं को भी नमस्कार किया था, और तीसरे श्लोक में जो अनादि निधन जैन आगम है उसको यहाँ नमस्कार किया था। ये जैन आगम कैसा है उसके बाद यहाँ फिर दोबारा हम भावार्थ में देखते हैं। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा पृष्ठ क्रमांक 1 नीचे का पैराग्राफ मूल में बोले जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया हुआ होता। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है, इच्छा के बिना खिलती है, उन्हें कोई इच्छा नहीं कि मैं इसको समझाऊं, सहज रूप से खिलती है। क्यों खिलती है कि पहले तो जब साधक अवस्था में ऐसा शुभ भाव था कि ये बात सभी लोग समझे, अन्य भी जो हम कहते हैं 16 षोडश कारण भावना वगैरह, उसके कारण तीर्थंकर नाम कर्म का उनको बंधन हुआ। अब 13वें गुणस्थान में जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी होता है। सहज रूप से वहां समोचरण की रचना, दिव्य ध्वनि का छूटना आदि बातें होती है, तो ये दिव्य ध्वनि इसको कह दिया है। तो ये हमें मूल उपदेश जिनेन्द्र भगवान के द्वारा मिला है, गणधरों ने उसको झेला है ने वो समझा है, और फिर द्वादशांग की रचना की है, और परंपरा गुरुओं की परंपरा से वो आज तक हमें उपलब्ध है। तो कहते जिनेन्द्र भगवान के द्वारा उपदिष्ट आगम परंपरा दृष्टि से, यानी परंपरा दृष्टि से नहीं, प्रवाह की अपेक्षा कहो, या वो तो तीर्थंकर होते ही रहते हैं और उनका उपदेश चलता ही रहता है, इसलिए इस दृष्टि से आदि और अंत रहित है। यानी ये उपदेश देने वाले तीर्थंकर अनादि से विद्यमान है, एक ही तीर्थंकर नहीं है, परंतु अनादि से इसका उपदेश देने वाले जीव यानी तीर्थंकर के रूप में विद्यमान रहते हैं, अंत रहित है, और ये अनंत काल तक ऐसा ही अंतरहित चलता ही रहेगा। उपदेशित उपदेश दिया हुआ, उपदिष्ट ने उपदेश दिया हुआ। पहली बात बताई आदि और अंतरहित है, यानी हमें जो भय लगता है अभी ये नष्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कुछ काल के लिए इसका उपदेश नहीं भी मिले फिर भी वो कहीं ना कहीं तो चल ही रहा, और ये तो अपने उपादान से ही मिलता है जीवन को, तो उन्हीं को मिलेगा जिनकी उपादान की योग्यता है। सर्वज्ञ वीतराग देव द्वारा प्रतिपादित होने से, ये कंडीशन क्यों डाली, क्योंकि सर्वज्ञ वीतरागता का जो हम स्वरूप निश्चित करते हैं तो हमें ये भी निश्चित हो जाता है कि उनका जो उपदेश है वो तो 100% सही है, प्रमाण जिसको कहेंगे। क्योंकि हमने देखा है तो सर्वज्ञ है, इन्हें सब कुछ जानते हैं। तीन काल तीन लोग अलोक सहित सभी द्रव्यों के सभी गुणों की सभी पर्यायों को युगोपत एक साथ स्पष्ट जानते हैं, यानी उसमें कोई अज्ञानवश झूठ बोले ये बात रहती ही नहीं। दूसरी बात, कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण वितराग है, किसी के प्रति द्वेष किसी के प्रति राग नहीं है। तो अपने भक्तों के लिए कुछ अलग से उपदेश दे दे या किसी जीव को कुछ बोले दूसरे किसी को कुछ, ये तो बात है ही नहीं वहां पर। तो कोई कषाय के कारण झूठ बोलने का कोई वहां सवाल ही नहीं। इसलिए उनके द्वारा प्रतिपादित यानी कथित होने से, अभी उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके पूर्वापर विरोध न आने से, यानी जिनेन्द्र भगवान की वाणी में उनके उद्देश्य में पूर्व और अपर यानी पहले कुछ और बताया और बाद में कुछ अन्य बताया, ऐसी बात नहीं, ऐसा विरोध कहीं पर भी नहीं आता, एक बात। दूसरी बात, प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाणों से खंडित न होने से, ये प्रमाण जो कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण यानी जो ज्ञान प्रत्यक्ष है ना, तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसा कहते हैं। केवल ज्ञान तो पूर्ण प्रत्यक्ष है, वो तो प्रमाण है ही है। केवल ज्ञान के वो उपदेश के अनुसार आगम के अनुसार जाना, ये श्रुत ज्ञान भी प्रमाण कहेंगे, यानी पांचों सम्यक ज्ञान तो प्रमाण ज्ञान है। अन्य भी जो हम कहेंगे ना, एक होता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, यानी लौकिक में जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, हम कहते हैं हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा, इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है उसको प्रत्यक्ष नहीं कहते, परंतु व्यवहार में हम उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। हमने प्रत्यक्ष अपनी कानों से सुना, ऐसा कहने की पद्धति है ना, उसको कहते हैं व्यवहार में, यानी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो कुछ अन्य हम चीजें हमें प्रत्यक्ष भाषित हो और उपदेश कुछ अन्य हो, ऐसा भी नहीं। परोक्ष प्रमाण क्या होता है, जैसे अनुमान है तर्क है, उसके द्वारा भी ये जो उपदेश दिया है उसको खंडित नहीं कर सकते, यानी उसको रूल आउट नहीं कर सकते। तीसरी बात क्या है, शंकादि दोषों का स्थान न होने से, यानी उसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई कंफ्यूजन हो ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल क्लियर कट है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उपदेश दिया है और बहुत विस्तार से सभी एंगल से भी समझाया गया है।
यानी उनके कथन में कहीं पर भी किसी को कोई शंका आ जाए या शंका से वो बाधित हो जाए, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं है। इतना कोई जो पॉइंट प्रत्यक्ष देखा है जाना है, इसलिए उसमें कोई कंफ्यूजन रह जाए ऐसी बात ही नहीं, तो ये ऐसा कैसा ऐसा शंका जिसको आवे नहीं, ऐसी बात शंका से रही है।
परोक्ष प्रमाण में आगम को लेना है कि तर्क को बनाना है,
परोक्ष प्रमाण में आगम भी है तर्क भी है अनुमान भी है, बहुत सारे हैं। अभी आगम से कैसे खंडित होगा, आगम जिनेन्द्र भगवान के आगम का ही यहाँ वर्णन चल रहा है, ये किसकी बातें चल रही है, आगम की बातें चल रही है। तो आगम को हम ऐसा नहीं कहेंगे आगम आगम के में द्वारा खंडित नहीं होता, अन्य भी जो परोक्ष प्रमाण है उससे वो खंडित नहीं होता। देखो ये मूल श्लोक में तीन बातें बताई थी, अनादि निधन है, दूसरी बात भले प्रकार वंदनीय है, और तीसरी बात निर्दोष है। अभी तक हमने आदि और अंत रहित ने अनादि निधन को देखा, अब ये निर्दोष की बात देखी। निर्दोष क्यों है, तो एक तो वो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा वितराग के द्वारा बताई है, और इसके कारण पूर्वापुर विरोध नहीं है, प्रत्यक्ष और प्रमाण से बाधित नहीं होता, खंडित नहीं होता, और तीसरी बात है शंकादि दोषों का स्थान नहीं है, इसलिए वो निर्दोष है, ये हमने दो देखे। अब जो वंदनीय है कह दिया है, तो तत्व के प्रतिपादन पूर्वक, प्रतिपादन यानी कथन, यानी तत्व को बताते हैं और वो प्रतिपादन पूर्वक शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय बतलाने के कारण, यानी ये जो तत्व हम सीखते हैं, ये जो अभी हम सब द्रव्यों का गुणों का प्रयाम का स्वरूप देखेंगे, उसकी परिणाम व्यवस्था देखेंगे, पूरे विस्तार से बात चलेगी, तो ये खाली याद करने से रटने से कोई प्रयोजन नहीं हमारा। हमारा प्रयोजन क्या है? तो अपनी आत्मा को जानना। आत्मा को कहना भी नहीं, अपने आप को जानना कि हम स्वयं आत्मा हैं। हमने अपने को जानने में अनादि से भूल की है और शरीर ही मैं हूं ऐसे हम मानते आ रहे हैं, ऐसे ही जानते आ रहे हैं। ये हमारा जानना मानना झूठ है। तो सही जानेंगे हम तो ये आगम में क्या होता है, तो तत्व के प्रतिपादन पूर्वक शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति का उपाय। प्राप्ति यानी उसको कैसे हम समझे, जाने, अनुभव करें, उसका उपाय यहाँ इसमें बतलाया है। इसलिए सब जीवों के द्वारा, विशेषतया ज्ञानियों द्वारा भले प्रकार वंदनीय है, क्योंकि ज्ञानी को उसकी वैल्यू ज्यादा मालूम है क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव किया अपना, और जिनके द्वारा जिस निमित्त से उसका अनुभव हुआ है उसके प्रति उनको बहुत अहोभाव हो जाता है। ये सहज ऐसा भाव आता ही है साधक की भूमिका में। ये ऐसा नहीं आता है तो वो कहीं न कहीं अभी गलत है। और ये आगम कैसा है? विपरीत वस्तु स्वरूप का, खोटे मार्ग का खंडन करने वाला है। ऊपर बताया था खोटी बुद्धि वाले शत्रुओं को अग्नि की तरह निर्दयता पूर्वक जलाता है, यानी अन्य मतियों की जो मिथ्या मान्यता है वो मान्यताओं का निषेध करता है। इस तरह से हमने यहाँ पर जिनेन्द्र भगवान की वाणी का स्वरूप देखा है और उसको कहा था जियात, यानी जीवित रहे। अब हम आते हैं पृष्ठ संख्या 2 पर। प्रमाण मंगलाचरण में ग्रंथकार ने श्री प्रवचन सार के मूल कर्ता तथा टीकाकार का अनुकरण किया है। हमने देखा है वहां पर भी कुंदकुंदाचार्य ने 5 गाथाएं मंगलाचरण रूप से बताई थी, वहां भी महावीर भगवान को वंदन किया, शेष तीर्थंकरों को किया, उसी पद्धति से यहां भी मंगलाचरण उन्होंने कर दिया। अब प्रतिज्ञा करते कोई भी ग्रंथ लिखते हैं तो पहले में पहले मंगलाचरण के रूप में भगवान को, पंच परमेश्वरों को नमस्कार किया जाता है, इसको आदि मंगल। फिर ग्रंथ लिखने के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक उसको लिखेंगे और इसमें क्या बताने वाले वो भी बताएंगे, किसके लिए। ये ऐसे 6 पॉइंट्स है, किसके निमित्त से बनाया है, क्या हेतु है बनाने का, उसका नाम क्या होगा और उसमें क्या बताएंगे, कितना बनाएंगे ग्रंथ, ये सब पहले ही बता देते हैं। तो ये प्रतिज्ञा का श्लोक हम पढ़ेंगे 4 नंबर का। इति वंदित पंच गुरु कृत मंगल सक्रिय स एष पुनः नामना पंचाध्यायीं प्रतिजानीते चिकीर्षितं शास्त्रम्। इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों का वंदना रूप मंगलाचरण, अभी हमने जो 3 श्लोक देखे थे, पहले भगवान महावीर को, फिर शेष तीर्थंकरों को, आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्कार किया, फिर आगम को नमस्कार किया, तो कहते इस प्रकार पांचों परमेष्ठियों का वंदनारूप मंगलाचरण सत्कर्म करके, यानी ये जो सत्कर्म है यथार्थ कहो या अच्छा जो कार्य करके ग्रंथकार अब पंचाध्यायी नामक इच्छित शास्त्र को बनाने की प्रतिज्ञा करता है। यानी यहां उन्होंने नाम बता दिया, नामना पंचाध्यायी, यानी पंचाध्यायी नामक शास्त्र को बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब ग्रंथ बनाने में कारण बताएंगे, हमने बताया ना किस निमित्त से, उनका हेतु क्या है बनाने का और किसके लिए बनाया है वो भी अभी यहाँ पर बताएंगे। 5 और 6 दोनों में कारण बताएंगे, हम एक एक श्लोक पढ़ेंगे। अत्रांतरंग हेतु यद्यपि भाव कवेर विशुद्धतर हेतोस्तथापि हेतु साध्वी सर्वोपकारिणी बुद्धि। यद्यपि इस ग्रंथ के बनाने में अंतरंग कारण कवि का विशुद्धतर परिणाम है, तो भी कारण का कारण, सबका उपकार करने वाली श्रेष्ठ बुद्धि यानी ज्ञान का विशिष्ट सूक्ष्म है। अमृतचंद्राचार्य ने भी कहा था मम परम विशुद्धिर भवतु, यानी ग्रंथ लिखने में तो कवि की विशुद्धि अधिक और बढ़ती है, क्योंकि उपयोग इसी में तत्व में रहता है और उससे तो उस जीव को ही अधिक से अधिक लाभ मिलता है, और फिर सहज रूप से अन्य भी लोगों को जीवों को ये जानने के लिए मिलता है, वो सहज रूप से हो जाती है। और उसके भी कारण का कारण बताया कि श्रेष्ठ बुद्धि ने ज्ञान का विशिष्ट सूक्ष्म है, तो उसके कारण ये लिखना भी बना, ये बात बता रहे। भावार्थ चारित्र, वो चरित्र हुआ है, अब चारित्र करना है। चारित्र गुण में जो दूसरे की भी पुस्तक है तो आप करेक्शन तो कर सकते हैं, केवल अन्य कुछ मैटर नहीं लिखना है आपको। चारित्र गुण में कषायों की मंदता जिसको विशुद्धि कहेंगे, और ग्रंथ बनाने का विकल्प कवि का विशुद्धतर परिणाम है, यानी विशुद्धि से यहां वितरागता नहीं समझना, मंद कषाय लेना। दो प्रकार के परिणाम बताए जाते हैं, एक संक्लेश और विशुद्धि। कषायों की तीव्रता को संक्लेश कहेंगे और कषायों की मंदता होना वो उसको विशुद्धि कहेंगे, ये शुभोपयोग है। यानी वो तो कषायों की तो मंदता है ही है, और उस कषायों की मंदता में अन्य अन्य भी कार्य हो सकते हैं, तो यहाँ कवि को कौन सा विकल्प आया है, तो ग्रंथ बनाने का। जो ग्रंथ बनाने का प्रथम कारण है, यहाँ दो तीन कारणों की चर्चा हो रही है, और उसका भी कारण कवि का विशिष्ट ज्ञान क्षोभम है, ज्ञान का उभार है, बुद्धि जो है, क्योंकि हम आप भी ग्रंथ बनाना चाहेंगे तो उतने ज्ञान बिना क्या करेंगे। जिस क्षोभम के कारण लिखित ग्रंथ द्वारा सब जीवों का भला हो सकता है, ये लिखित ग्रंथ के द्वारा, क्योंकि जो उपदेश देते हैं वो तो सबसे भला होता ही है, जो डायरेक्ट सुनते हैं ना साक्षात गुरु के मुख से जो सुनते हैं वो तो सबसे अच्छी बात है, परंतु जो लिखित भी रूप से रखा जाता है लिखित, तो सैकड़ों सालों तक वो चलता है। जैसे अभी हमारे षटखंडागम आदि पुस्तकें जो 2000 वर्ष के पहले पहले उससे भी पहले लिखे थे, आज तक उसका स्वाध्याय यहाँ होता है, यानी कितने सैकड़ों हजारों वर्षों तक वो बात चलती रहती है। तो कहते हैं कि ये लिखित ग्रंथ द्वारा सब जीवों का भला हो सकता है। पहले हमने यहाँ भाव दीपिका का भी अभ्यास किया था, तो दीपचंद जी काशीवाल नाम के पंडित हुए, उन्होंने तो ऐसा लिखा था कि आज के जमाने में तो गुरुदेव के कारण ये स्वाध्याय की परंपरा सुनने वालों की भी इतनी अधिकता है, परंतु उनके जमाने में, वो दीपचंद जी काशीवाल के जमाने में कहते थे कि मैं बताना भी चाहता था कि सुनने वाला कोई श्रोता नहीं है, इसलिए मैं सब लिख के जाता। तो उन्होंने तो उनके जमाने में लिखा, तो हमने तो 300 साल के बाद उसको पढ़ा, यानी बाद में भी कितने ही जीवों का कल्याण होता है, इसलिए ये कवि की बुद्धि के कारण ये लिखित रूप से ग्रंथ के द्वारा भी जीवों का भला हो सकता है। यदि ग्रंथ बनाने का भाव हो और विशेष क्षोभम न हो तो भी कार्य नहीं हो सकता। किसी को क्षोभम बहुत है और ग्रंथ लिखने का भाव न, ये भी हो सकता है, इनके तो दोनों है, ग्रंथ लिखने का भाव भी है क्षोभम भी है, और वो कवित्व भी है, क्योंकि तभी तो उन्होंने संस्कृत में श्लोकों की रचना की, और उसका अर्थ भी हमें अभी यहाँ तो टीकाकार के रूप में हम और उसके भावार्थ लिखने वालों के कारण हमें वो भी उपलब्ध है। यदि क्षोभम हो और ग्रंथ बनाने का भाव न हो तो भी कार्य नहीं हो सकता, अतः दोनों कारणों का निर्देश है, निर्देश ने कथन किया है, बताया। 6 नंबर पढ़ेंगे हम श्लोक। सर्वोपि जीव लोक श्रोतुं कामो वृषम हि सुगमोक्त्या विज्ञप्त उतस्य कृते तत्रायमुपक्रमः श्रेयान्। सभी जीव लोग यानी समस्त जीव, जीव लोग यानी जीव धर्म को सरल कथन शैली से, सरल किंतु क्रमबद्धता, सरल तो है परंतु क्रम से जाना चाहिए। पहले तो द्रव्य गुण पर्याय क्या है, वस्तु क्या है, उसके नाम क्या है, पारिभाषिक शब्द उनके अर्थ क्या है, उसका विस्तार से स्वरूप बताएंगे, यानी वो क्रम से एक 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 बातें बताएंगे। तो कहते हैं धर्म को सरल किंतु क्रमबद्ध कथन शैली से, ये क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं है, ये कथन शैली को कहा, क्रम से जो सिखाया जाता है, जैसे हम स्कूल में जाते हैं क्रम से हमें आगे आगे के पाठ पढ़ाए जाते हैं, इस तरह। तो सभी जीव लोग धर्म को सरल कथन शैली से ही सुनने का इच्छुक है, यह बात सर्वविदित है, सबको पता है, क्योंकि ये सरल करके समझाते हैं तो लोगों को समझ में आता है, तो आगे पढ़ने का मन भी करता है। पहले कठिन कठिन कुछ बातें सुनते हैं, कुछ नहीं समझ में, पहले ऐसा होता था ना कि कोई ये अच्छी पुस्तक है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, चलो पढ़ना शुरू करेंगे, शुरू तो करते थे, दो चार पांच पेजेस तक वो तो रहता था उनका टेम्पो का, यह कितने शब्द समझ में नहीं आता तो चलो फिर छोड़ देते। अतः उसके लिए यानी वो जीव लोग के लिए उसमें यानी धर्म श्रवण में यह क्रम यानी वो जो कथन शैली श्रेष्ठ होगा यानी लाभदायक होगा, यानी यहाँ जिस कथन शैली से अभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो धर्म को सुनने के इच्छुक लोगों को जीवों के लिए बहुत कार्यकारी होने वाला है, यह भी ग्रंथ बनाने के एक कारण है। अब विषय सूचना यानी ग्रंथ में कौन से विषय यहाँ बताने वाले हैं, ये जो ग्रंथ बनाने की पद्धति है ऐसी, अभी कोई भी ग्रंथ, हाँ आपने भी धवला में हमने देखा, जय धवला में, महाधवला में, महाबंध में देखे, कोई भी निकालो, कोई भी ग्रंथ निकाल के देखो, शुरुआत में ये तो इस तरह से होता ही है, मंगलाचरण करेंगे, उसका निमित्त बताएंगे, वो ग्रंथ बनाने का कारण बताएंगे, फिर उसमें विषय को स्पष्ट करेंगे, उसका नाम भी बताएंगे, कितने श्लोक प्रमाण वो भी वहां लिख देंगे, अब यहां नहीं लिखा है। देखो विषय सूचना, फिर भी उन्होंने पांच अध्याय की बात तो सूचित की ही है, पांच अध्याय लिखेंगे करके। सात नंबर, सति धर्मिणी धर्माणाम मीमांसा स्यादन्यथा न्याया साध्यम वस्तु विशिष्टम धर्म विशिष्टम ततः परम चापि। धर्मी, धर्मी किसको कहा, समय दृष्टि आपके द्रव्य को भी धर्मी कहेंगे, धर्मी शब्द के अलग अलग अर्थ है, कहीं ज्ञानी को भी धर्मी कहते, समय दृष्टि को भी धर्मी कहते, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया उन्होंने, धर्मी यानी सामान्य वस्तु सत यानी द्रव्य की बात है के होने पर ही, क्योंकि जो धर्मों को धारण करता है, गुणों का जो धारक, गुणी भी कहते ना उसको, वैसे तो पर्यायी भी कहते हैं, पर्यायों का जो समूह है, अखंड पिंड है, उसको उसके कारण द्रव्य को पर्यायी भी कहेंगे। तो धर्म यानी सामान्य वस्तु सत के होने पर ही धर्मों का यानी सत की विशेषताओं का विचार होता है। क्या कहते हैं, सत यानी कोई वस्तु है, वो है ये जब हम नक्की करेंगे तो उसमें क्या है, वो कैसी है, कैसी है ना उसके धर्म क्या है, वस्तु कैसी है समझाए जाते हैं, तो वहां उनके गुणों की चर्चा होती है, पहले वो है वो पहले बताएंगे ना, तो पहले वस्तु जो सत है उसका अगर अस्तित्व है तो ही उसके धर्मों का विचार होगा, यही न्याय से ठीक है, यानी ये तो न्याय है, उचित है, इसलिए पहले सामान्य वस्तु सिद्ध करने योग्य है। सामान्य वस्तु ने अभेद वस्तु, उसी को क्या कहा, सत सामान्य, यानी उसमें भेद किए बिना अखंड वस्तु, ये सामान्य इधर अलग है और ये विशेष इधर, ऐसा नहीं है, एक जो अभेद अखंड वस्तु है उसी को समझाने के लिए भेद करके समझाया जाता है, तो उसको विशेषों को, उसको हम भेदों को विशेष कहते हैं। वस्तु तो अखंड एक होती है, जैसे हम जीव द्रव्य कहेंगे, तो जीव द्रव्य में क्या क्या हो तो बाद में चर्चा करेंगे, इसमें कितने गुण है, कैसी पर्याय होती है, उसकी क्या क्या व्यवस्था है, वो तो बाद में, वो सब भेद करके फिर हम उसको समझेंगे समझाएंगे। तो कहते हैं पहले में पहले सामान्य वस्तु सिद्ध करने योग्य, यानी वो है कि नहीं वो पहले सिद्ध करेंगे, और उसके पश्चात धर्म विशिष्ट वस्तु, धर्म यानी जो सामान्य है वही धर्म विशिष्ट है, धर्म विशिष्ट यानी धर्मों से युक्त है, यानी विशेष वस्तु है, भेदात्मक वस्तु है, जीवा जीवादि वस्तु भी सिद्ध करने योग्य है। यानी यहाँ तो अन्य अन्य जो वस्तु, कोई जीव वस्तु है कोई अजीव वस्तु है, उसकी विशेषताओं के कारण उसमें कुछ अन्य अन्य धर्म है गुण है, इसके कारण उन वस्तुओं में भी भेद है। पहले में पहले वो वस्तु है यानी सामान्य वस्तु को सिद्ध करेंगे, फिर धर्म विशिष्ट वस्तु यानी विशेष वस्तु, यानी यहाँ कहेंगे, यहाँ तो ये कहना चाहते हैं पहले में पहले द्रव्य है, द्रव्य की सिद्धि करेंगे भेद किए बिना, अच्छे द्रव्यों के भी भेद नहीं करेंगे, फिर विशिष्ट धर्म से युक्त वस्तु यानी विशेष गुणों से युक्त होने के कारण हम उनको पहचानते, ये जीव है, ये पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, वो भी सिद्ध करने योग्य है। पहले सामान्य सत को कहकर फिर उस सत में क्या क्या विशेषता है उनको सिद्ध करेंगे। जैसे कोई सत चेतन है तो कोई अचेतन है, सत कहने से तो सभी द्रव्य उस पे अंतर्भूत हो गए। अब ये सत के ही विशेष की अपेक्षा से, वो जो सत है ना सभी है, अस्तित्व गुण है सब में, सभी सत द्रव्य लक्षण, सत सत्ता ये द्रव्य का लक्षण है, तो हमने द्रव्य को सिद्ध कर दिया। फिर वो द्रव्य में कुछ विशेषताएं है ना, तो कोई सत जीव है चेतन है, यहाँ लिखा ना, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, कोई सत चेतन है, सत कहने से द्रव्य, कोई द्रव्य चेतन है, तो कोई सत अचेतन है, अचेतन भी सत है, उसकी भी सत्ता है। जैसे चेतन की सत्ता है, अन्यमति की क्या मान्यता है, बस एक मैं ही हूँ, बाकी कुछ है ही नहीं, वो तो माया है, सब माया है, माया है, कुछ है ही नहीं, बस ये तो जैसे कोई इमेजिनेशन है को या कल्पित है या इल्यूजन है, इस तरह से कहते हैं, वैसी बात है नहीं है। कहते कोई सत चेतन है तो कोई अचेतन, कोई नहीं, कोई सत अचेतन है, कोई मूर्तिक है तो कोई अमूर्तिक है, ऐसे कोई सत मालूम है जो अमूर्तिक है। हाँ आप अमोल जी बहुत दिन के बाद आ गए ना, आपको कोई ऐसा सत मालूम है कि जो अमूर्तिक है, अमूर्तिक यानी अरूपी, मूर्तिक यानी जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसा कोई द्रव्य मालूम है मूर्तिक, छह द्रव्यों में ऐसा कोई मूर्तिक द्रव्य है जिसमें स्पर्श है रस है गंध है वर्ण है, नहीं नहीं आपको समझा नहीं मेरा प्रश्न, जीव द्रव्य कैसा है, अमूर्तिक है, ये मूर्ति के नहीं स्पर्श रस गंध वर्ण ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा द्रव्य है, पुद्गल है, ख्याल में है ना बात, कोई बात नहीं, सब रिकलेक्ट होगा, पूरा मोक्ष मार्ग सुना है आपने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो अच्छा किया आपने शुरू किया ना, ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है। यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई मूर्तिक है तो कोई अमूर्तिक है, सुशीला भी नाम बताएंगे, ये कौन सा सत मूर्तिक है और कौन सा सत अमूर्तिक है। आप क्या, हाँ आपके असत का नाम क्या है, जीव, तो सत चेतन जो है वो तो अमूर्तिक है, फिर धर्म अधर्म आकाश काल भी अमूर्तिक है, तो मूर्ति कौन सा है, एक पुद्गल द्रव्य ही मूर्ति, ये सब आने वाली बातें हैं, वो समझाएंगे, अभी तो केवल थोड़े आपको विषय की सूचना दे रहे हैं। कोई भाववती शक्ति युक्त है तो कोई भाववती क्रियावती दोनों युक्त है, कोई वैभाविक शक्ति युक्त है तो कोई नहीं, इस सब की चर्चा आने वाली है, अभी वही विषय चलेगा, द्रव्य क्या है उसमें क्या गुण है वगैरह वगैरह, भावार्थ वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। वस्तु कहने से द्रव्य सामान्य विशेष स्वरूप है। वो सब आएगी बात है, भावती क्रियावती वो विस्तार से समझेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। देखो वस्तु कैसी है, सामान्य विशेषात्मक है, भावती है। इच्छावान न वे, इच्छावान वाली बात नहीं है, वो तो प्रेरक निमित्त में होता है। यानी भावती तो सब में है और क्रियावती तो जीव पुद्गल में, वो तो भावती तो है ही है उसमें। देखो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य का अर्थ होता है उसमें कोई भेद किए बिना, अभेद का हम कंसिडर करेंगे तो कहेंगे वो तो सामान्य है। किसी अपेक्षा भेद नहीं करना, ना क्षेत्र की अपेक्षा भेद करना, ना गुणों की अपेक्षा करना, ना काल की अपेक्षा, कुछ नहीं, तो उसको कहेंगे हम सामान्य। और विशेषण है भेद करेंगे, इतने अनंत गुण है, इतने प्रदेशी है, वो तो हमने उसको भेद करके समझाने के लिए, समझने के लिए भेद किए है, उसको कहेंगे वो विशेषात्मक। तो वस्तु कैसी होती, तो सामान्य विशेषात्मक। सो पहले अध्याय में सामान्य वस्तु अर्थात द्रव्य मात्र का निरूपण करेंगे, ये विषय की सूचना दे रहे हैं ना, यहाँ पर भावार्थ में बता रहे हैं कि जो पहला अधिकार है ना, अवांतर अधिकार। पहले अध्याय में बहुत सारे अधिकार होंगे, पहले अध्याय का पहला अधिकार, तो उसमें क्या बताएंगे, सामान्य वस्तु का स्वरूप करेंगे, यानी द्रव्य मात्र, बस द्रव्य इतनी बात करेंगे, द्रव्य का स्वरूप क्या है बस इतनी बात करेंगे। और दूसरे अध्याय में विशेष वस्तु, विशेष वस्तु कहने से उसके गुणों के द्वारा हम पहचानेंगे ये जीव वस्तु है, ये पुद्गल वस्तु है, यानी उसी को कहेंगे द्रव्य विशेष, सत विशेष, दूसरी भाषा में जीवा जीवादि, जीव अजीवादि। जीवा हुआ ना, जीव प्लस अ जीवा हुआ, जीव अजीव मिलकर कैसे पता है, जीवा जीवादि, जीव अजीव आदि का निरूपण किया जाएगा। क्योंकि जो सत सामान्य है वही तो सत विशेष है। क्या कहा, जो सत सामान्य है, जिसको हम सामान्य रूप से देख रहे हैं, उसमें कोई विशेषता भी तो है ना, वही सत विशेष है। जीव अगर हम कहेंगे सामान्य की अपेक्षा सभी गर्वित हो गए, जीव पुत्र धर्म धर्म आकाश का, ये सारे कैसे सत सामान्य है, अभी उनमें कुछ विशेषता है, तो उन्हीं को हम विशेषताओं की अपेक्षा सत विशेष कहेंगे। सत कहने से सभी छह द्रव्यों को इंक्लूड कर दिया, अब जीव कहने से वो सत में हमने कुछ भेद डाल के समझा, ये जीव द्रव्य है, तो जीव द्रव्य सत चेतन कहने से उसमें सभी अनंत जीव आ गए, उसमें भी वो संसारी है कि मुक्त है उसकी चर्चा नहीं है, सब कुछ उसमें वो सत जीव में आ गए। कि जो सत सामान्य है वही तो सत विशेष है, और दोनों धर्मों का ज्ञान होने पर ही पूर्ण वस्तु का ज्ञान होता है, जिसको प्रमाण कहेंगे। यानी हमें सामान्य विशेषात्मक वस्तु को पहले जानना चाहिए, क्योंकि उसके विशेष स्वरूप का, सभी तो द्रव्य सत ही है ना, तो सत का अनुभव करो तो किसका, इसका अनुभव करेंगे, ये भी सत है, समझ में आती बात। तो सबकी विशेषताओं को भी जानना आवश्यक है, यदि विशेषताओं को नहीं जानेंगे, उसकी पहचान नहीं करेंगे, तो हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए सामान्य भी और विशेष भी, सामान्य विशेषात्मक ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अनुभव की बात आगे है, फिर किसको गौण करना, किसको मुख्य करना, वो बात आगे चलेगी, पर मुख्य गौण करने के लिए पहले दोनों का ज्ञान तो आवश्यक है कि नहीं है। हम इस समय सारादि का जो विषय है ना, शुद्ध नहीं अभेद अखंड को हम विषय करेंगे, आप विषय करने के पहले ये उसकी विशेषताओं को जानना आवश्यक है, जानकर उसको गौण करेंगे, यानी वो ज्ञान की पर्याय में है पर उपयोग हमने दूसरी जगह लगाया।
यहाँ पर अपेक्षा
आने
लगाई, जैसे हम मेटल कहते हैं,
हाँ,
मेटल कहने से सामान्य सत्य,
हाँ,
मेटल कहने से उसमें सोना है, चांदी है, बंधन है, विरोधा है, ये है तो मिट, इसलिए वो भी सामान्य में से विशेष बताया था। तो वो सामान्य में भी इंक्लूडेड है और विशेष सत्य में भी आया। सामान्य सत्य यानी द्रव्य को हमने सामान्य सत्य कहा, जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य,
विशेष
सत्य, इसको सामान्य विशेष के अपेक्षा दूसरी भी रहा था कि हमने जीव द्रव्य को सामान्य कहा तो उसके गुण विशेष सत्य थे, गुण को विशेष सामान्य सत्य कहा तो पर्याय उसकी विशेष सत्य। इस तरह से दोनों अपेक्षा लगती है।
नहीं नहीं, यहाँ आपकी अपेक्षा ही लगेगी,
पहली अपेक्षा लगाइए,
क्योंकि यहाँ सामान्य द्रव्यों का स्वरूप है, इसलिए द्रव्य कहने से सभी सामान्य में आ गए। मैं तो आगे की बात बताई आपको कि द्रव्य में हमने भेद करके समझा, वो बात अलग है। आपने जैसे उदाहरण दिया है कि धातु या मेटल कहने से सभी उसमें आ गए, और फिर उसमें विशेष क्या है, ये सोना है, ये पीतल है, ये स्टील है, ये उसमें विशेषता, वो विशेष बात सही है आपकी।
और यहाँ पर द्रव्य सब को कहेंगे तो सामान्य रूप से छह द्रव्य को लिया, और फिर जीव द्रव्य को सब वो विशेष सत्य, धर्म द्रव्य को सब इस तरह से लेना,
क्योंकि यहाँ केवल द्रव्य का ही स्वरूप बताने जा रहे हैं पहले अधिकार। वही बात है, वही उसी को कहेंगे महासत्ता अवंत सत्ता, वो तो आपको उसकी याद है, प्रोजन सार में भी है, पंचाशिका में भी है। तो जो सत सामान्य है वही तो जीव रूप सत विशेष है या पुद्गल रूप सत विशेष है, जैसे हम कहेंगे ना ये मानव कहने से सभी मनुष्य आ गए। फिर हमने वो देश वाइज या नेशन वाइज उसको डिवाइड करेंगे, वो तो उसकी विशेष हो जाएगी, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है।
अभी ने बताया जो गुण को अगर सामान्य कहेंगे तो उसके पर्याय को विशेष कहेंगे, तो एक ही गुण को लिया समझे ज्ञान गुण को, ज्ञान गुण के पर्याय को विशेष कहेंगे या सब गुण मिलते हो कहेंगे तो बस हर एक पर्याय को विशेष कहेंगे।
देखो ये तो अपेक्षावश है, अपेक्षावश बता रहे, ये तो आगे की बात उन्होंने बताया। यहाँ तो
मैंने ये बताया कि सामान्य विशेष दो प्रकार से कथन किया जाएगा, इसमें से जो पहला कथन है द्रव्य को ही सत्ता और एक एक द्रव्य को लेकर विशेष सत्ता, वो बात यहाँ
वो यहाँ है, यहाँ वो अप्लाई होती है, और गुणों की वो जो विशेषताएं हैं उसकी बात अलग है, वो आगे चलकर आएगी। यहाँ जो है ना सत सामान्य और सत विशेष, यानी छह द्रव्य है वो सत सामान्य, और छह द्रव्यों के हम अलग अलग नाम लेके कहते हैं वो सत विशेष हो जाते हैं, इतनी तक ही ये विशेषता है। ये द्रव्य में जो मैंने बताया तो प्रदेश वगैरह वो बात यहाँ नहीं लेना, ये अच्छा कि आपने बता दिया, वो आगे आएगी, वो आगे आएगा, यहाँ नहीं, बात सही है आपकी। देखो प्रमाण श्री पंचाशिकाय की प्रथम 26 गाथा सामान्य वस्तु की है, फिर विशेष वस्तु की है। उसी प्रकार श्री प्रवचन सार दूसरे अध्याय में प्रारंभ की गाथा 93 से 126 तक सामान्य वस्तु का निरूपण है, फिर विशेष का, ठीक उसी क्रम को ग्रंथकार ने यहाँ स्वीकार किया है और उसी में से यह सब विषय लिया है। ये भूमिका यहाँ समाप्त होती है और यहां से भी पहला अधिकार चालू हो जाता है, यानी यहां द्रव्य का निरूपण। अभय दृष्टि से श्लोक नंबर 8 से 70 तक और द्रव्य का लक्षण, द्रव्य का निरूपण में सभी बातें आएगी, उसमें से भी पहले यहां जो गाथाएं बताएंगे अभय दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से द्रव्य का लक्षण बताएंगे, 8 से 14 श्लोक तक ये विषय चलेगा। यानी कहाँ तक ये विषय चला है पहले बताने की पद्धति, पहले भी हमने जैसे नाचारी की टीका तो उसको पात नहीं पा कहते, अभी ये इतने गाथा तक ये विषय चलेगा, ऐसा कहते हैं कि पद्धति है उनकी। हमने पहले भी यहाँ ये पंचाध्याय का यहाँ अध्याय अपना चले थे, प्रवचन आपने लिए थे 2001 में और दो में वो अभी 13 साल हो गए, 12-13 साल। ये जो 8 नंबर का श्लोक है उसी को मंगलाचरण के रूप में हमने रखा, तभी अभी कल से हम इसको मंगलाचरण में ले लेंगे। ये तो द्रव्य का सामान्य स्वरूप है और रोज हम उसको पक्का करेंगे तो ये 12 साल अभी नहीं भूले हैं हमारे को कभी पूछते तो याद आता है हा? हम इसको
द्रव्य के अलग अलग नाम यहाँ पर
ने नाम तो आगे दिए हैं परंतु उसका लक्षण यहाँ बताया द्रव्य का स्वरूप बता रहे वो कैसा है नाशवान है क्या अविनाशी है कब निर्माण हुआ वो सब इसी में बता रहे पढ़ेंगे तत्त्वं सल्लक्षणिकं सन्मात्रं वायतः स्वतः सिद्धं तस्मादनादि निधनं स्वसहायं निर्विकल्पं च। देखो यहाँ द्रव्य के लिए तत्व शब्द आया है। अभी द्रव्य के जो अलग अलग पर्यायवाची जिसको कहें एकार्थवाची जो नाम है उसकी भी लिस्ट आगे बताएंगे। तो यहाँ जो तत्व जो है देखो हम पहले गाथा के श्लोक को ही पढ़ेंगे। तत्वम लिखा वो कैसा है तो सत है। सल्लाक्षणिकं तो के आगे ल आता है आधा तो और आगे ल तो डबल ल हो जाता है तो सत लाक्षणिकम यानी सत्य लक्षण वाला है। सन मात्रम और सत तो के आगे म आता है तो त का न हो जाता है। ये बहुत सारे अटपटे ऐसे नियम है। त का जो जोड़ाक्षर बनता है ना उसमें अलग अलग अक्षर सामने आते हैं तो उसका अलग अलग हो जाता है। यहाँ पहले त प्लस ल डबल ल हुआ त और म तन मात्र हो गया जैसे हमने रे सन्मति सतमति वो सन्मति हो जाता है सतमान सन्मान हो जाता है। वैसे यहाँ सन मात्र यानी सत मात्र वस्तु कैसी है सत मात्र है। वहां यतः यतः ने क्योंकि स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध का स्वयंभू नहीं कहा। स्वयंभू कहते तो स्वयं से बनी हुई कहना पड़ता। बनी नहीं है बनी हुई कहेंगे तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसको। ये तो है अनादि से है तो स्वतः सिद्ध है। कहते यतः यानी जिस कारण वो स्वतः सिद्ध है तस्मात यानी उस कारण क्योंकि यह स्वतः सिद्ध है इसलिए क्या है अनादि निधनम अनादि और निधन है यानी उसके कोई बिगिनिंग नहीं है कोई एंड नहीं है अंत नहीं अनादि अनंत है। और कैसे स्व सहाय है सेल्फ सफिशियंट है किसी पर की सहाय की उसे आवश्यक ना टिकने के लिए है ना परिणमन के लिए। द्रव्य ने सत कहते हैं तो उसका लक्षण ही है तो यह अपने आप में परिपूर्ण है उसको किसी अन्य की सहाय की कुछ मदद की कोई प्रभाव डाले असर डाले कुछ अपेक्षा नहीं। निमित्त तो होगा कि नहीं निमित्त रूप से होगा। आप क्या कहते हैं आप क्या कह रहे हैं निमित्त रूप से तो होगा कि नहीं होगा होगा क्यों अब क्या कहें ये द्रव्य की बात है। निमित्त किस में आता है पर्याय में तो द्रव्य क्या में है ना बात। हम आपको कुछ भी पूछेंगे प्रश्न आपको अटेंटिव रहना है। निमित्त की बात उपादान की बात कहाँ आती है तो परिणमन में पर्याय में होगी। ये हमें द्रव्य की बात कर रहे हैं। द्रव्य अनादि से है स्वभाव तो है निमित्त अभी नई कुछ चीजें बनने ने अवस्थांतर होना है तो वहाँ निमित्त की बात होती है। ये द्रव्य के होने में कोई निमित्त तो है नहीं वो सभी द्रव्य तो अपने से है बस है तो स्व सहाय है और निर्विकल्प है। निर्विकल्प विकल्प का अर्थ होता है भेद यानी द्रव्य है द्रव्य कहने से वो अभेद अखंड है। यह छह द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य का देखो हमने अर्थ नहीं पढ़ा था ऊपर पढ़ रहे थे अर्थ यहां से पढ़ेंगे। देखो तत्व यानी द्रव्य सत लक्षण वाला है ये गुण गुणी अभेद दृष्टि से अथवा सत मात्र है यानी सत्व ही सॉरी सत ही तत्व है ये अभेद दृष्टि
दोनों अभेद्य से
हाँ। ये तो अभेद ही है ना द्रव्य कहने से,
ये जो ऊपर वाला जो पहला सत्य
यहाँ गुणगुणी में अभेद किया है
यानी यहाँ जो पहला दिया है ना तत्व ब्रैकेट में द्रव्य सत्य लक्षण वाला है, ये सत्य को गुण और गुणी इनमें भेद न करते हुए अभेद दृष्टि से उसको कहा।
देखो क्या कहना चाहते हैं, सत्य ऐसा लक्षण कहेंगे, जैसे अभी सत को अलग रखो, हम जीव को क्या कहें ज्ञान वाला, तो ज्ञान ये उसका लक्षण हुआ और जीव ये द्रव्य हुआ, तो उसमें एक गुण है और एक गुणी है, तो ऐसा वाला कहने से सत्य लक्षण वाला कहने से सत ये उसका एक गुण हो गया, लक्षण हुआ, सत्यपना अस्तित्वपना सत्तापना ये उसका लक्षण हुआ, ये सत ये द्रव्य का लक्षण है, सत द्रव्य लक्षणम, यानी लक्षण और द्रव्य इसको अभेद करके बताया, तो कहते वो द्रव्य ही सत है, उसको वो दूसरी जो बात है ना पहले में पहले सत लक्षण वाला कहा, सत सन मात्रम अथवा वो इटसेल्फ सत है, पहले तो सत वाला है कहा, सत लक्षण वाला कहा, अथवा कहेंगे या वो ही सिर्फ सत्य है, वो सत ही है, द्रव्य ही सत है,
वो ही जब आप कहेंगे तभी तो आपने अभेद कर दिया,
और यहाँ पर भी सत लक्षण वाला में भी वो उनका अभेद है, वो गुण और गुणी को अभेद करके ही बताना चाहते हैं, यहाँ तो भेद की दृष्टि नहीं है,
मतलब ये
कैसे
सत का लक्षण ही सत्य है,
द्रव्य का लक्षण ही सत्य है और उस लक्षण के कारण उसको सत कह रहे, लक्षण के कारण द्रव्य का दूसरा नाम है सत्य, जैसे आत्मा का ज्ञान लक्षण है तो आत्मा ज्ञानम भी कहते ना, आत्मा को ज्ञान से भी पुकारा जाता है, चेतन द्रव्य भी कहते हैं हम उसको, ज्ञान द्रव्य भी कहेंगे हम, यानी वो कहने से उसका एक गुण अलग नहीं निकाला, वो लक्षण से हमने पूरा द्रव्य समझा, वैसे यहाँ सत लक्षण वाला कहने से ये अखंड द्रव्य को हम ख्याल में ले रहे, यानी यहाँ दो पद्धति से बताए, ये सत लक्षण वाला कहो या दूसरी भाषा में सत ही है वो सन मात्र यानी सत मात्र है, तो कहते सत लक्षण वाला कहो या सत मात्र है कहो, यानी सत ही तत्व यानी सत ही द्रव्य है, ये तो अभेद दृष्टि हो गई, वहां तो गुण गुणी अलग बताकर फिर अभेद किया था, यहाँ डायरेक्ट अभेद ही बता दिया, ये तो एक हो गए, वो तो सत उसका लक्षण बताया या वही सत है ऐसा बताया, अब दूसरी बात बता रहे क्योंकि वह स्वतः सिद्ध है इसलिए, पहले कारण बताया ये कैसा है, तो स्वतः सिद्ध है और स्वतः सिद्ध होने के कारण ये अनादि अनिधन है, इसके कोई बिगिनिंग नहीं, वो तो है क्योंकि सत है ना, सत कहने से तो है पना है उसमें, तो जिसमें है पना है वो कभी नहीं था और फिर हुआ, ये कैसे कहेंगे, तो अनादि अनिधन है, स्वतः सिद्ध है ना, स्वतः सिद्ध है तो उसमें सहायता की कहां जरूर है, इसलिए वो स्व सहाय है और निर्विकल्प ने भेद रहित अखंड है, यह छह द्रव्य में प्रत्येक द्रव्य का सामान्य लक्षण है वस्तु मात्र का लक्षण, तो सत कहने से वस्तु मात्र ने सभी द्रव्य उसमें आ गए, द्रव्य का लक्षण क्या है तो सत है और क्या है वो स्वतः सिद्ध है अनादि निधन है स्वसहाय निर्विकल्प। अब व्याख्या
सामान्य लक्षण कहा गया है
हाँ।
सामान्य का तो जिसको कॉमन कहते हैं, जैसे हमने सामान्य गुण को सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, वैसे ये छह लक्षण जो है वो प्रत्येक द्रव्य के हैं, लिखा है ना ब्रैकेट में, तो छह द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य का सामान्य लक्षण है, प्रत्येक द्रव्य में अप्लाई होगा, ये तो केवल हमने नाम छह नाम बताए, अभी द्रव्य के अलग अलग नाम बताए,
ये निर्विकल्प जो शब्द जो है वो भेद रहित बताया, उसका मक्खनलाल जी ने कुछ अलग किया है, वचनातीत किया है,
हमें तो इसी के अनुसार चलना है, आपको साइड बाय साइड दूसरा अभ्यास करना है तो जरूर करना, परंतु इसीलिए हमने सरनाराम जी की टीका इसलिए ली कि बहुत अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करके भी समझाया। क्योंकि विकल्प के जो अनेक अर्थ होते हैं, विकल्प एक अर्थ होता है भेद, दूसरा अर्थ है राग। विकल्प क्या ऑप्शन है आपके पास, दूसरा क्या पर्याय है, हम कहते हैं हमको यहाँ से जाना है दिल्ली, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, कौन सी पर्याय है दूसरी, दूसरा विकल्प क्या है, एयर से जाना है कि ट्रेन से जाना है, ट्रेन बंद है अभी, दूसरा विकल्प क्या है, गाड़ी निकालेंगे, चलो निकाल।
ये पांचों लक्षण को आगे की कथा में खुलेंगे,
अभी ये सब बताइए ना, ये व्याख्या जो बताए ना यहाँ, ये व्याख्या है अभी उसका एक स्पष्टीकरण बताओ, मराठी में व्याख्या कहने से डेफिनेशन कहते हैं और यहाँ हिंदी में व्याख्या कहने से उसका स्पष्टीकरण, ये उसका अर्थ होता है, इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। व्याख्या द्रव्य को अभी ये कौन कौन से नामों से पुकारते हैं आपको याद करना है, मेरे भाई को अभी तक याद है। द्रव्य को यानी द्रव्य तो नाम बता ही दिया उन्होंने, तत्व, सत्व, सत्ता, सत, नहीं नहीं यहाँ पढ़ रहे मैं, अच्छा अच्छा हाँ बोलो बोलो, नहीं नहीं अभी बोलो बोलो, हमने नहीं सुना था।
तत्व, सत्व, सत्य, सत्ता, अन्वय, वस्तु, अर्थ, पदार्थ, सामान्य, देश, धर्म, समवाय, समुदाय।
बहुत अच्छा,
थोड़ा
नहीं नहीं खाली समूह और इसमें धर्मी और देश में धर्मी देश, अच्छा हुआ देखो 12 साल तक याद रखा है, ऐसा याद रखना चाहिए, ये याद है तभी वो स्कूटर के ऊपर सामने चिट्ठी रखते थे, सिग्नल आए तो याद करते थे, है ना। ये हमारे यहाँ पर भी रविवार के दिन एक पुष्पा बहन आती थी वैष्णव, और जब सिद्धांत प्रवेश कम आती थी ना तो भी उसकी उम्र 72-73 थी कुछ, आते बहुत रुचि से आती, और जो कुछ याद करना है ना जैन तत्व परिचय पुस्तक में से लिख के सामने किचन में सामने रखती और याद करती रहती। देखो फिर हम इसको पढ़ेंगे यहाँ से, वो चिट्ठी रखते हैं,
चिटका के रखते हैं, रोटी बना,
हम चाहते हैं तो उसमें से मार्ग निकलता है, है ना,
चाहते हैं तो,
हाँ चाहते हो तो। देखो यहाँ 14 नाम बताए हैं, पढ़ेंगे भी द्रव्य को, इन्हें द्रव्य भी उसमें से एक नाम हो गया, तत्व, सत्व, सत्ता, सत, अन्वय, वस्तु, अर्थ, पदार्थ, सामान्य, धर्मी, देश, समवाय, समुदाय इत्यादि अनेक नामों से पुकारते हैं। सो ग्रंथकार कहीं किसी शब्द का प्रयोग करेंगे, ये कभी कभी क्या है श्लोक में वो कितने वहां अक्षरों को यूज कर सकते ये भी हो सकते हैं, या जिस विषय की बात चल रही है उसके अनुसार भी वहाँ अलग अलग नामों का प्रयोग होगा, तो ये सभी द्रव्य के अर्थ में है, इसमें से कितने शब्द ऐसे वो तो गुणों के लिए भी होंगे पर्याय की, जैसे अर्थ ये शब्द द्रव्य के लिए भी आता है गुण के लिए भी आता है, कहाँ किस अर्थ में ये समझना हमारी जिम्मेदारी है, और ये तो बिल्कुल विषय को शुरू से समझाएंगे तो कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, और वो स्वयं बताएंगे कि इस अर्थ में यहाँ ये शब्द आए हुए। तो कल मैं पूछूंगी, अभी मिली भाई को तो याद है, हा? आप भी कोशिश करना इसमें से रोज एक बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगी याद। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, सामान्य विशेषात्मक वस्तु को, प्रत्येक वस्तु कैसी है तो सामान्य विशेषात्मक, अभी हमने देखी ना, भेद की दृष्टि से देखना, कथन करना, विशेष कथन अर्थात धर्मों का कथन है, और उसी को अभेद अखंड सत्य की अपेक्षा निरूपण करना धर्मी का कथन है, ऐसा यहाँ आशय है। क्या कहते हैं, सामान्य विशेषात्मक वस्तु ने द्रव्य को भेद की दृष्टि से कहना, देखना या कथन करना, देखने नहीं वो जानना या कथन करना, यानी ये जो भेद हम ज्ञान में भी समझते हैं और वो बोलते भी, इसलिए देखना या कथन करना जिसको हम कहेंगे विशेष कथन, यानी धर्मों का कथन है। यानी भेद करके समझना, समझाना, जानना या कहना, ये क्या है? धर्मों का कथन। उसी को अभेद अखंड सत की अपेक्षा निरूपण करना धर्मी का कथन। धर्म यानी द्रव्य, धर्म यानी उसके भेद, उसके गुण, और धर्म यानी अखंड द्रव्य। ऐसा यहाँ आशय है। यहाँ मात्र सामान्य अंश नहीं है, किंतु सामान्य विशेषात्मक अभेद सामान्य है। जो अनुभय ने, निश्चय ने अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से कहा जाता है, इसी नय से यह लक्षण किया है। प्रमाण दृष्टि का लक्षण यह नहीं है। इन्होंने जो बात की थी ना, ये सामान्य ने एक द्रव्य के भेदों की यहाँ चर्चा नहीं है, सभी द्रव्यों को मिलकर सत कहा है और उसमें ये विशेषताएं बताएंगे। अभी ये दूसरे पॉइंट की भी चर्चा और आगे की भी चर्चा हम कल करेंगे विशेष रूप से। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक